जैसे जैसे अस्पताल का रास्ता आगे बढ़ रहा था, पूरी पक्की सड़क के आसपास नई बनी हुई इमारतें और पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे थे, पर विक्रम को खुले रेत के मैदान और उसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर पानी के लिए जाती हुई औरतें दिखाई पड़ रही थीं, जिन्होंने घड़े के ऊपर घड़ा सजाकर रखा था। ये सब कब की घटना होगी? विक्रम अभी भी इन्हीं सब चीज़ों में उलझा हुआ था। खुद से उसके लाख अनुमान लगाने के बावजूद भी एक्सैक्ट टाइम उसे पता नहीं चल रहा था। तभी उसने एक सजा हुआ ऊँट देखा जो कि बैठा हुआ था, और उसके आसपास से और भी कई सारे ऊँट थे जो बैठे हुए थे। सभी ऊँट इस तरह से सजे हुए थे जैसे कि कहीं जाने के लिए तैयार हों, पर अभी उन्हें यहाँ से प्रस्थान करने के लिए ऑर्डर नहीं मिला हो, इसलिए आराम से अपनी जगह पर बैठे हुए अपनी लंबी गर्दन इधर उधर कर रहे थे। हर ऊँट के साथ दो दो आदमी खड़े थे जो कि अपने ऊँट पर कोई कोई सामान रखवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं जाने की तैयारी हो रही है। सभी ने लगभग एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, धोती और बंधा हुआ पुराने स्टाइल का अचकन जैसा कुर्ता। सबके सर पर कसकर बंधी हुई बड़ी बड़ी पगड़ी थी, और चेहरे तो अलग ही दिव्यता लिए हुए दिखाई पड़ रहे थे। हाथ पैर से मजबूत बलिष्ठ भुजाओं वाले इन सभी आदमियों की सबसे बड़ी खासियत थी कि सबकी लंबाई 6 फीट से अधिक समझ में आ रही थी, और चेहरे का रुबाब उनकी घनी तीखी मूछों से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारे योद्धा थे और किसी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। कमर में बंधी हुई तलवार इसकी गवाही दे रही थी, या फिर किसी शादी ब्याह जैसे समारोह से लौट कर आते हुए लोग थे। राजाओं की बारात भी तो ऐसे ही निकलती थी। लगता था जैसे कि युद्ध के लिए जा रहे हैं, पर अंतर इतना होता था कि युद्ध में जहां शस्त्रों की अधिकता होती थी, शादी ब्याह के समारोह के समय समाज में अपनी राजसी ठाठ दिखाई जाती थी, और कुछ ऐसा ही ठाठ इस वक्त दिखाई पड़ रहा था। इस कारण विक्रम को यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि यह युद्ध का उद्घोष है या फिर बारात से लौटते हुए लोग। इधर गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी, और विक्रम ध्यान से एक लाइन में इन सारे ऊँट और उनके मालिकों को देख रहा था। सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, इसमें कुछ भी उसे अलग नहीं लग रहा था। एक दो चेहरे पर जब उसकी नज़र पड़ी तो लगा जैसे कि उसकी जान पहचान के लोग हैं। शायद दिमाग पर ज़्यादा जोर देता तो उनके नाम भी याद आ जाते, पर दिमाग अभी अपने वश में कहा था। वो तो बस किसी सम्मोहन के तहत इसी दृश्य में पूरी तरह से रम गया था। धीरे धीरे तो वो ये चीज़ भी भूल गया था कि वो गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हर एक ऊँट को देखते हुए उनका निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है, जो कि उसकी ड्यूटी का ही एक हिस्सा था, यानी कि वो खुद इन सारे उधम का हिस्सा था। तभी सबसे पहले वाले ऊँट पर उसकी नज़र गई, जिसको उसने पहले भी एक बार पीछे से देखा था। ऐसा लगा जैसे कि वो इस ऊँट को पहचानता हो, या फिर इसकी साज सज्जा उसे जाना पहचाना जैसा होने का आभास दे रही थी। ये ऊँट भी बैठा हुआ था। एक चीज इसमें अलग और थी, इस ऊँट के पीठ पर एक पौधे जैसा बैठने के लिए मुलायम सिंहासन जैसा बनाया हुआ था, और चारों तरफ से उसे घेरे हुआ था कि उसे पकड़कर आराम से बैठ जा सके और गिरने का कोई खतरा ना हो। इस ऊँट की दूसरी साइड एक डोली रखी हुई थी, और उस डोली के आसपास 5-6 औरतें पूरे घूंघट में खड़ी थीं। रंग बिरंगे लहंगे और उसके दुपट्टे पर शीशे का ऐसा काम किया हुआ था कि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी तो रिफ्लेक्शन से आंखें एक पल के लिए बंद हो जा रही थीं। डोली पर रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों का आवरण पड़ा हुआ था, और कुछ दूर पर उस डोली के कर बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे हुए हाथ में लाठी लिए हुए खड़े थे। अभी एक औरत ने डोली में से एक थाल निकाला जिस पर कि कपड़ा पड़ा हुआ था। समझ में नहीं आया कि उसमें क्या है, लेकिन वो उसे लेकर उस सजे हुए ऊँट की तरफ बढ़ गई। शायद उसके मालिक को देने वाली थी। रेशम के बॉर्डर वाली धोती और मलमल का कुर्ता पहने हुए एक आदमी बड़े प्यार से अपने ऊँट सहला रहा था। औरतों ने सर झुकाकर वो थाल उस आदमी के सामने कर दिया, और उस आदमी ने अपना हाथ अपने ऊँट के गर्दन से हटाकर उस थाल के ऊपर पड़े हुए कपड़े पर रख दिया, और धीरे से फिर अपना वही हाथ उठाकर उस औरत को वो थाल जाने का इशारा किया। विक्रम ने देखा कि उसकी पांचों उंगलियों में सोने के हीरे जड़े हुए मुद्रिकाएं चमक रही थीं। हल्की हल्की बातें कानों में आ रही थीं, जो कि धुंधली थीं, स्पष्ट नहीं थीं, पर विक्रम को समझ में आ रहा था। शायद पीछे से किसी ने मजाक किया था कि राजा सा एक बार भर पूरी नज़र तो देख लो कि आखिर ससुराल से मिला क्या है। कुछ भी मिला हो, हमें दिलचस्पी इसमें नहीं है, उस आदमी ने कहा। हाँ, इसमें क्यों होगी, दिलचस्पी तो पूरी डोली के अंदर बैठी हुई है। ये क्यों नहीं कह रहे कि पहली नज़र उन पर पड़ेगी, उसके बाद ही किसी दूसरी चीज़ पर यह नज़र जाएगी। बात सही है तुम्हारी, असली उपहार तो हमारा डोली में है, जिसे पूरी रात जागरण के बाद बाहुबल से हमने प्राप्त किया है। ये तो तुम सब आपस में बांट लो, आखिर इसमें तुम सभी बराबर के हिस्सेदार हो, आदमी ने भी बराबर जवाब दिया।